Jai Radha Madhava Kunja Bihari.
Jai Radha Madhava Kunja Bihari.
Jai Radha Madhava Kunja Bihari. Gopi Jana Vallabha Girivara Dhari.
Gopi Jana
Janavallabha Girivara Dhari.
Gopi Janavallabha
Girivara Dhari. Yashodanandana Vrajajanarandana. Yamuna Tira Vanachari.
Yamuna Tira Vanachari.
Yamuna Tira Vanachari.
Yamuna Tira Vanachari.
Jayada Madhava. Gopi Jana Vallabha Girivara Dhari.
Gopi Jana
Vallabha Girivara Dhari. Gopi Jana Vallabha सारथी की श्री सुनिता गौर सुंदर की समवेत गौर भक्त वृंद की गौर। सब मेरे पीछे दोहराइए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय,
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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप गदामयं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपां सागरजातम् सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितं। हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमस्ते। तप्त कांचन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरूपश्च कृपा सिन्धुभ्येव च कटिकानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासवि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आज हम चर्चा करेंगे एक विशेष विषय के बारे में। हम यहाँ आ रहे थे तो मैं सोच रहा था कि भगवान के जो पवित्र नाम हैं उनके बारे में चर्चा की जाए, लेकिन यहाँ पहुँचने के बाद कदमपुरी गुरु ने कहा कि कुछ और टॉपिक पढ़ना चाहिए। तो फिर मैं थोड़ा स्ट्रगल कर रहा था कि क्या बोलूं, तो अचानक मैंने नोटबुक खोला तो उसमें प्रिपेयर्ड लेक्चर पढ़ा हुआ था, तो मैंने सोचा उसी को रिपीट करता हूँ। तो श्रीमद् भागवतम सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है। तो भगवत गीता में केवल हमें संबंध ज्ञान प्राप्त होता है कि भगवान के साथ हमारा संबंध क्या है। तीन चीजें हमारे आचार्य गण देते हैं कि जितनी भी गौड़िया संप्रदाय की जो फिलॉसफी है, शिक्षा है, सिद्धांत है, उनको तीन भागों में बांटा गया है। एक क्या है? संबंध, दूसरा है अभिधेय और तीसरा है प्रयोजन। तो संबंध मतलब ये जानना कि मैं और परम भगवान कृष्ण में क्या संबंध है, और दूसरा है यदि हम अपने संबंध को जानते हैं तो फिर मुझे क्या करना चाहिए। वो नॉलेज कहाँ हमें प्राप्त होता है? श्रीमद् भागवतम में। हम भगवत गीता हमें इंट्रोड्यूस कराती है और ये समझाती है कि आप ये भौतिक शरीर नहीं हो, भगवान के शाश्वत अंश हो। और ये जब हम जानते हैं तो फिर क्या करना चाहिए मुझे? मैं भगवान का अंश हूँ तो क्या मेरा ड्यूटी क्या है? तो उसका ज्ञान कहाँ से हमें प्राप्त होता है? श्रीमद् भागवतम से। इसलिए भगवान गीता के अंत में कहते हैं सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। वहां गीता का एंड है, जाके कृष्ण की शरण ग्रहण करना। लेकिन नेक्स्ट क्या? शरण ग्रहण कर ले, लेकिन आगे क्या करो? करने के लिए कुछ होना चाहिए। आत्मा का स्वभाव क्या है? क्रियाशीलता, वो सदैव कार्यरत होता है। तो जो अभिधेय का ज्ञान है मतलब वो प्रोसेस जिसमें जिसे भक्ति कहा जाता है। भक्ति क्या है? बहुत सरल चीज है। भगवान और भगवान के भक्त के बीच जो प्रेममय संबंध का या सेवा का जो आदान प्रदान होता है उसे भगवत भक्ति कही जाती है। तो भागवतम ऐसे भक्ति के जो उदाहरण है, भक्ति या सेवा की जो प्रोसेस है उससे भरा पड़ा है। वहां हम सीखते हैं कि एक प्रकार से कैसे भक्त भगवान से आदान प्रदान करता है और ऐसे आदान प्रदान से क्या निकलता है। जैसे दधि को हम क्या करते हैं, चर्निंग करते हैं, तो उसे क्या निकल के बाहर आता है, मक्खन। तो उसी प्रकार से जब भक्त और भगवान के बीच में आदान प्रदान होता है प्रेममयी सेवा का, तो उससे प्रगाढ़ प्रेम जिसे हम कृष्ण प्रेम कहते हैं उसकी उत्पत्ति होती है और उसी को टेक्निकल भाषा में प्रयोजन कहा गया है। और वो प्रयोजन हम सबके जीवन का परम लक्ष्य है। भगवान का भी प्रेम अपने भक्त के प्रति अत्यधिक बढ़ जाता है और भक्त का भी प्रेम अब भगवान के प्रति बहुत अधिक मात्रा में बढ़ता है। तो इस प्रकार से भागवतम में कई सारे प्रसंग हैं जिनको एक भक्त को नियमित रूप से समझना चाहिए, सुनना चाहिए, भक्तों के बीच में चर्चा करनी चाहिए। इसलिए देहोवती के जो पुत्र है कपिल देव, वो प्रोसेस बताते हैं कि भगवान की चर्चा कैसे करनी चाहिए। वो कहते हैं सताम प्रसंगान मम वीर्य संविदो भवन्ति हृत्कर्ण रसायन कथा। वो कहते हैं कि भगवत कथा को, भगवत चर्चा को भक्तों के संगति में आकर श्रवण करना चाहिए, भक्तों के संगति में आकर चर्चा करनी चाहिए, जिससे क्या होगा, भवन्ति हृत्कर्ण रसायन कथा तज्जोषु अपवर्ग वर्तमनि। वो कहते हैं कि जैसे ही इस कथा की चर्चा होती है तुरंत भगवान के प्रति प्रगाढ़ आसक्ति का उदय होता है। तो इसलिए ये बहुत आवश्यक है कि भगवान के प्रति वास्तव में हमारे हृदय में प्रगाढ़ आसक्ति को जागृत करना है तो हमें भगवान के भक्तों के सहचर्य की आवश्यकता है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने इस जगत को कुछ दिया है तो चैतन्य महाप्रभु ने इस जगत को दो अमूल्य भेंट या अमूल्य गिफ्ट्स दी हैं। और वो क्या है, पहले गिफ्ट क्या है उनकी, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और ऐसे चैतन्य महाप्रभु के दूसरी अमेजिंग गिफ्ट है उनके भक्त, क्या है, उनके भक्त। तो इसलिए महाप्रभु ने एक कंप्लीट पैकेज दिया है, जब भक्त होंगे तभी नाम संकीर्तन होगा। तो ये दोनों चीजें हमारे जीवन में हमें कामना करनी चाहिए, भगवान से कुछ मांगना है, भगवान से कुछ प्रार्थना करनी है, भगवान के चरणों में कुछ निवेदन करना है। तो जगदानंद पंडित जो चैतन्य महाप्रभु के पार्षद है वो कहते हैं साधु संगे कृष्ण नाम यही मात्र चाहे संसार जीने त्यार कौन वस्तु ना है। कि वास्तव में मैं संसार सागर से बाहर निकलना चाहता हूँ तो वो कहते हैं कि हे कृष्णा मुझे दो ही चीजें दे दो मेरे लाइफ में, और वो क्या है, साधु संगे कृष्ण नाम, मुझे भगवान के भक्तों का संग दो और ऐसी संगति में मैं सदैव अपने जीवा से कृष्ण के नामों का उच्चारण कर सकूं। यही तो चीज नरोत्तम दास ठाकुर ने अपने गीत में भी कही। तो नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं, वो कहते हैं कि तांदेर चरण सेवी भक्त सनेवास जनमे है यही अभिलाष। तो हमारे हृदय में तो बहुत सारी अभिलाषाएं हैं, लेकिन हम यदि इस दो अभिलाषाओं के प्रति फिक्स हो जाते हैं तो हम देख सकते हैं कि हमारे आध्यात्मिक जीवन में कितनी रफ्तार से परिवर्तन आ रहा है। इसलिए उन्होंने कहा तांदेर चरण सेवी, तांदेर कौन है, जो कृष्ण के प्रिय भक्तों की परंपरा है। ऐसे प्रिय कृष्ण के जो पूर्ववर्ती भक्त हैं या हमारे पूर्ववर्ती आचार्य गण हैं उनके चरणों की मैं सेवा करना चाहता हूँ। और दूसरी चीज क्या दो मुझे कृष्णा, जन्म, वो कहते हैं भक्त सनेवास, कहाँ निवास दो मुझे, भक्तों के संगति में। ये दो चीजें हमारे लाइफ में है तो हमें समझना चाहिए कि मुझसे अधिक कोई भाग्यशाली व्यक्ति इस पृथ्वी पर नहीं है। और ये दो चीजें हमसे दूर जा रही है तो तो समझना चाहिए कि मुझसे अधिक दुर्भाग्यशाली व्यक्ति इस पृथ्वी पर नहीं है। यही तो श्री चैतन्य महाप्रभु जब दक्षिण भारत की यात्रा में गए थे गोदावरी के तट पर, उनकी मुलाकात रामानंद राय जो मद्रास के गवर्नर थे उनसे जब हुए तो चैतन्य महाप्रभु सन्यासी हैं, लेकिन रामानंद राय एक गवर्नर है, ये गृहस्थ भक्त है जिनसे उनके चरणों में निवेदन करके चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि हे रामानंद राय, मैं तुम्हारे मुख से सुनना चाहता हूँ भगवान कृष्ण के बारे में। रामानंद राय ने कहा, मैं तो एक सर्वसाधारण गृहस्थ हूँ, मैं क्या कृष्ण तत्व को जानता नहीं हूँ, आप तो इतने उन्नत महान सन्यासी हो। लेकिन चैतन्य महाप्रभु सारे जगत को ही शिक्षा देना चाह रहे थे, किबा शुद्र किबा न्यासीश किबा विप्र किबा शुद्र के नाय जय कृष्ण तत्व वेता सही गुरु है। तो कृष्ण तत्व को जो जानता है, रामानंद राय ने कहा मैं तो एक इंस्ट्रूमेंट की भांति हो, वीणा के भांति जिसकी जो तार आप बजाते हो तभी आवाज निकलती है, उसी प्रकार से मेरे मुख से हे चैतन्य महाप्रभु आप ही बुलवाओगे तभी मैं कृष्ण कथा का वर्णन कर पाऊंगा। तो कई सारे प्रश्न उन्होंने पूछे और उसमें बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न भी चैतन्य महाप्रभु ने पूछा, और वो क्या था, चैतन्य महाप्रभु ने पूछा कि रामानंद राय आप मुझे बताओ इस संसार में सबसे बड़ा दुख क्या है। अभी हमारे जीवन में कितने सारे दुख है, हर रोज हर घंटे में दुखों के जो वेव्स हैं, ग्राफ है बदलता रहता है। तो रामानंद राय कहते हैं कि चैतन्य महाप्रभु इस संसार में सबसे बड़ा कोई दुख है तो वो है आपके भक्तों के संगति से अलग हो जाना, आपके या भगवत भक्तों के संग से दूर हो जाना, इससे बढ़कर दुख है इस संसार में नहीं है। इसलिए भक्तों की संगति में हमें कैसे बना रहो उसके लिए हमें प्रयास करना चाहिए अपने लाइफ में, क्योंकि भगवान के भक्तों के संग में ही जीवन की सारी सिद्धि छुपी हुई है। हाँ, लेकिन भक्तों के संग में बने रहने के लिए एक गुण की आवश्यकता है, और वो गुण क्या है, टॉलरेंस। क्या गुण है, सहनशीलता। सहनशीलता की कमी होगी तो भक्तों का संग भी हमें कठिन महसूस होगा। इसलिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज को किसी ने पूछा कि आपके मठ में या मंदिर में रहने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए, तो भक्ति सिद्धांत महाराज ने कहा मठ में या मंदिर में वही रह सकता है जिसके अंदर कौन सा गुण सबसे अधिक है, सहनशीलता। तो क्योंकि यदि आप भक्तों को सहन करना नहीं सीखेंगे तो फिर माया हमसे सहन करवाएगी, माया बहुत अधिक हम भौतिक विपदाएं हमें देगी, और फिर हम आवाज न करते हुए भी माया की जो लाते हैं वो क्या करेंगे, खाएंगे। जैसे आचार्य एक स्टोरी बताते हैं ना सर्कस की, कि बहुत कम प्राइस में सर्कस देखने को मिल रही थी, 1 रुपए में महान सर्कस कशको दिखाया जा रहा था। तो पहले एक व्यक्ति जो गया, बहुत लंबी लाइन लगी कि अरे अमेजिंग सर्कस है इस दिल्ली में, तो गया पहला व्यक्ति अंदर गया तो क्या 10-12 लोग खड़े हुए थे हाथ में लाठी और कुछ चीजें लेकर। जैसे पहला दर्शक अंदर आया उसकी पिटाई करके फिर उसको बाहर भेजा, तो वो उसने सोचा अरे मैं अंदर पहला व्यक्ति गया हूँ सर्कस देखने के लिए, अब मैं रोते चिल्लाते बाहर जाऊंगा तो लोग क्या मेरे बारे में सोचेंगे, क्या दिखाने लगा बाहर जाकर, वो बड़ी बड़ी स्माइल, क्राइंग हार्ट्स, क्या कहते हैं उसको, कि बड़े स्माइलिंग फेसेस एंड क्राइंग हार्ट्स। तो वही हालत उसकी थी कि अंदर जब गया तो इतने सारे उसके ऊपर प्रहार हो रहे थे, आंसू नहीं निकल रहे थे लेकिन, और फिर जब बाहर आया तो सब देख रहे थे अरे ये अमेजिंग पहला व्यक्ति है जो सर्कस देख के आया है, और बाहर गया तो हंस रहा था लेकिन इतने सारे उसकी पिटाई हो रही थी। वैसे हर एक व्यक्ति अंदर जा रहा था उसके साथ वही हो रहा था और बाहर निकलते हुए हंस रहा था, अपने दांत दिखा रहा था। तो हमारी सिचुएशन वैसे ही है, इस संसार में भौतिकतावादी व्यक्तियों का जीवन एक सर्कस शो के समान है, और वो घुसते अंदर बाहर निकलते तो क्या है, समाज के सामने बड़ी गाड़ी, बड़ी कोठी, बड़ा लाइफस्टाइल है ना, और क्या है अंदर अत्यधिक दुख वो अनुभव करते हैं। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि भगवान के भक्तों को सहन करें तो हमारे लिए लाभदायक है। सहन तो हमेशा करना पड़ेगा, या तो माया की लाते सहन करो या भक्तों के वचनों को क्या करो, सहन करो और बने रहो भगवत चरणों में। यही तो सिद्धांत चैतन्य महाप्रभु का है, तृणादपि सुनिश्चयेन। जैसे सहन करने का अर्थ क्या है कि सारी विपदाओं को सहन करना, सहन करने के साथ और एक चीज करना, उसको वास्तव में सहनशीलता कही गई है। केवल सहन करना ही कोई ग्लोरियस नहीं है कि देखो प्रभु जी मैं कितना सहन कर रहा हूं, सहन करने के साथ एक चीज ऐड होनी चाहिए और वो क्या है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ये असली सहनशीलता है भक्त के जीवन में कि जीवन की सारी समस्याओं को झेलते हुए उसके हाथ से हरि नाम छूटता नहीं है, एक दिन उसका ऐसा बीतता नहीं है कि जो कृष्ण के नामों का उच्चारण नहीं कर पाता। इस प्रकार की सहनशीलता वास्तव में ग्लोरियस है। इसलिए तो हरिदास ठाकुर ने कहा, हरिदास ठाकुर ने क्या कहा, उनकी गलती क्या थी हरिदास ठाकुर की, कि वो कंटिन्यूअसली कृष्ण के नामों का उच्चारण करते जा रहे थे, यही दोष था। दोष क्या था, कृष्ण के नामों का उच्चारण कर रहे थे। हमारे संप्रदाय में ऐसे ऐसे भक्त हुए हैं, ऐसे ऐसे स्त्रियां डिवोटीज हुई है जिनके जीवा में कृष्ण नाम सदैव नाचा करता था। प्रभुपाद उदाहरण है, प्रभुपाद को पूछा स्वामी जी, हाँ किसी एक व्यक्ति ने, आपको मैं जब देखता हूँ आप तो इतने सारे विदेश विदेशों में निरंतर भ्रमण करते रहते हैं और भ्रमण के साथ साथ इतना सारा मैनेजमेंट करते रहते हैं, इतनी सेवाएं करते रहते हैं, आप हरे कृष्ण महामंत्र कैसे निरंतर उच्चारण करते हैं। प्रभुपाद ने कहा मैं 24 घंटे क्या करता हूँ, कृष्ण के नामों का उच्चारण करता हूँ। आपको देखना है तो आपका कान कहाँ लगाओ, मेरे पेट में लगाओ। और वास्तव में उस भक्त ने जब कान पेट में लगाया तो प्रभुपाद के पेट से क्या आवाज आ रही थी, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो इस प्रकार से प्रभुपाद की गॉड ब्रदर भी थे। जब उनको पूछा कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ने भी कुछ अपने शिष्यों को लंदन भेजा था, विदेशों में भेजा था स्वामी भक्ति वेदांत से पहले, और भक्ति वेदांत स्वामी भी गए, ये सफल होके आ गए और उनके दूसरे गुरु भाई सफल नहीं हुए, क्या कारण है? तो कृष्णदास बाबा जी, उनका नाम क्या था, कृष्णदास बाबा जी। तो प्रभुपाद के बहुत आगे आ जाइए, तो प्रभुपाद के बहुत क्लोज वो उनके गुरु भाई थे। तो जब कृष्णदास बाबा जी को जब ये पूछा तो उन्होंने कहा कि एक ही चीज है, भक्ति वेदांत स्वामी में एक अंतर है उनके गुरु भाइयों से अलग, और वो क्या है कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती के जो गुरु भाई हैं वो पहले भी गए थे और बाद में प्रभुपाद गए और वो सफल होकर आए। क्यों? क्योंकि दो चीजें इनके पास इनके हृदय में थी। एक क्या, पहली चीज प्रभुपाद में थी कि अपने गुरु के आदेशों का पालन करने में दृढ़ निश्चय, या आदेशों का पालन करने की दृढ़ जो श्रद्धा है, और दूसरी चीज कृष्ण के नामों पर गहन विश्वास। तो जब हम गुरु और कृष्ण नाम दो सेवा, शिष्य का मतलब है जो जिसको केवल दो सेवाएं पता है, और इन दो सेवाओं को जो करता है वो बहुत शक्तिशाली डिवोटी बनता है। एक है नाम सेवा और दूसरा है गुरु सेवा। गुरु सेवा में ही नाम सेवा है, लेकिन यदि हम अपने आध्यात्मिक जीवन को वास्तव में बहुत शक्ति संपन्न बनाना चाहते हैं तो इन दो चीजों को हर एक भक्त को गंभीरता से लेना चाहिए। और जब हम भगवान के नाम को गंभीरता से लेते हैं, नाम की महिमा के बारे में जानते हैं, नाम तत्व का ज्ञान रखते हैं तो कृष्ण उस व्यक्ति को प्रोटेक्ट करते हैं। चैतन्य महाप्रभु जब जगन्नाथपुरी में निवास कर रहे थे, कौन सा वो स्थान है जहाँ निवास करते थे? गंभीरा। हाँ, आप सब जगन्नाथपुरी गए होंगे। तो जहाँ चैतन्य महाप्रभु गंभीरा में निवास कर रहे थे, तो वहां निरंतर एक छोटा सा बालक भी वहां रहने के लिए आ गया, जिनका नाम मकर ध्वज पंडित था और जिनको दीक्षा दे थे चैतन्य महाप्रभु के दूसरे जो महान भक्त थे उन्होंने। और वो जो बालक जिनको गोपाल गोपाल पुकारा जाता था, क्या पुकारा जाता था?
गोपाल।
तो गोपाल सारे भक्तों को देखता रहता था, छोटा सा बच्चा है वो, प्रभु जी कैसे माला कर रहे हैं, दूसरे कैसे कर रहे हैं, बच्चा देखता रहता है ना सबको। तो वहां गंभीरा में और एक डिवोटी रहता था जिसकी जीवा 24 घंटे कृष्ण नाम का उच्चारण करती थी। क्या करती थी? कृष्ण नाम। जैसे चैतन्य महाप्रभु के और एक भक्त थे राधा कुंड में, जिनका नाम एक माता जी थी कृष्ण प्रिया ठाकुरानी, वो ऐसी अमेजिंग लेडी थे डिवोटी कि वो कृष्ण नाम उसकी जीवा पकड़े दांत में तभी वो रुक जाता था कृष्ण नाम। अन्यथा वो चाहे क्लास में भी बैठी हो या कुछ भी कार्य कर रही हो तो ये हरे कृष्ण महामंत्र उसकी जीवा से स्वाभाविक रूप से बाहर निकलता था। हमें तो जोर लगाना पड़ता है। और सुबह जब जप कर, सबसे भक्त के जीवन में सबसे दुखदायी क्षण, दुखदायी समय कोई है तो वो कौन सा है? कौन सा है? जपा का जो समय है। उस समय से हम सब डरते हैं, ऐसे लगता है सुबह कभी ना हो, शाम को अच्छा है, क्लास सुनना अच्छा लगता है, प्रसाद पाना अच्छा लगता है, लेकिन जब सुबह हो जाती है, हाँ स्नान आदि होता है, तब सोचते हैं कि भीड़ में, और वैसे भीड़ में याद नहीं आती पूरे दिन भर, वो जब सुबह होती है तभी भीड़ में की याद आती है। और उसमें भी उसको पकड़ना बस भारी होता है, जैसे कि किसी सांप को पकड़ने जा रहे, दूर जितना रहे उतना हमें अच्छा लगता है, और उसको पकड़े है तो ऐसे लगता है कि सारी शक्ति चली गई। ये ऐसी हमारी दयनीय स्थिति है, हमसे हरि नाम होता नहीं। लेकिन महाप्रभु के जो प्रिय भक्त है उनका लक्षण है कृष्ण नाम के प्रति रुचि। इसलिए कोई कहे कि मैं हरे कृष्ण मोमेंट में हूं, है ना, तो उसको किस चीज में एक्सपर्ट होना चाहिए? हरे कृष्ण महामंत्र का जप करने में, चांटर। तो जो कोई योगा योगा मोमेंट में है तो उससे आशा की जाती है कि ये सारे योगा एक्सरसाइज में एक्सपर्ट होना चाहिए। उसी प्रकार से यदि हम कहते हैं कि मैं हरे कृष्ण वाला हूँ, हरे कृष्ण मोमेंट वाला हूँ, तो उससे आशा की जाती है कि वो क्या करे, सदैव कृष्ण नाम के जप में वो रुचि जागृत करे या कंटिन्यू करे। तो ऐसे ही महान महान डिवोटीज चैतन्य महाप्रभु के मोमेंट में थे। जैसे वो कृष्णदास बाबा जी के बारे में बता रहा था, जब वो प्रभुपाद डिसअपीयर हुए तो उनकी सेवा प्रभुपाद के शिष्यगण करते थे, क्योंकि प्रभुपाद के क्या है, वो गुरु भाई हैं। अपने गुरु की सेवा के लिए जैसे हम तत्पर हैं, वैसी ही केयर हमें क्या करना चाहिए, गुरु के गुरु भाइयों की करनी चाहिए। वैष्णव सदाचार है, ये वैष्णवता है। तो प्रभुपाद के शिष्य उनकी सेवा करते थे वृंदावन में, और जब वो बहुत बीमार हो गए, उनको हॉस्पिटल में रखा वृंदावन में, तो दो डिवोटी डॉक्टर थे, और वो डिवोटी डॉक्टर जब उनको चेक कर रहे थे स्टेथोस्कोप से और कान में लगाकर चेक कर रहे थे हृदय में, तो देखा कुछ आवाज आ रही है। तो एक दोनों डॉक्टर डिवोटी ये कहते शायद बाहर कुछ साउंड सिस्टम चल रहा है जिसमें क्या आ रहा है आवाज, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जब ऐसा कह रहा था तो दोनों टेरेस पर गए कि कहां से साउंड आ रहा है, क्योंकि वृंदावन में जहां देखो वहां भागवत कथा या कृष्ण कीर्तन की ध्वनि सुनाई देती है। तो जब वो गए तो देखा अरे कोई साउंड नहीं आ रहा है, फिर से वो बाबा जी महाराज के पास गए, फिर से अपने कान में वो स्टेथोस्कोप लगाया, चेक करने लगे। एक ने जब लगाया तब उसको आवाज आने लगी, कहां से, छाती से आवाज आ रही थी, कृष्ण नाम हरे कृष्ण महामंत्र। प्रभुपाद कहा करते थे मेरा ये जो गुरु भाई है कृष्णदास बाबा जी, इसका कृष्ण नाम में बहुत अधिक रुचि है। वो हर रोज ऐसे घुमा करते थे ब्रज में,
गले में मृदंग डाल के अकेले किसी की कोई परवाह नहीं, केशी घाट तो परिक्रमा मार्ग या फिर राधा दामोदर मंदिर, अकेले मृदंग गले में डालकर बजाते हुए क्या कृष्ण कीर्तन कर देते और एक जगह बैठकर निरंतर हरि नाम का जप किया करते थे। तो प्रभुपाद ने कहा ये मेरा जो गुरु भाई है ये बहुत पावरफुल है, जिसका कृष्ण नाम में अत्यधिक अनुराग है। तो इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु के उस ग्रुप में भी एक डिवोटी था गंभीरा में, वो निरंतर सोते हुए भी उसकी जीवा हरे कृष्णा करती रहती थी। सारे भक्त चकित थे। तो एक बार जब वो भक्त सुबह सुबह बाथरूम के लिए जा रहा था तो उसने सोचा अरे जब ऐसे अशुद्ध स्थान में मुझे कृष्ण नाम नहीं लेना चाहिए, तो उसकी जीभ तो रुक नहीं रही थी। तो उन्होंने क्या किया, अपने जीवा को दोनों हाथों से ऐसे पकड़ लिया, क्या किया पकड़ लिया और जा रहे थे अपना मॉर्निंग नेचर का कॉल अटेंड करने के लिए। तो ये जो छोटा सा बालक है, क्या नाम था उनका, गोपाल ने देखा, गोपाल ने कहा प्रभु जी रुको कहां जा रहे हो, और उन्होंने तो पता चला कि कहां जा रहे हैं, लेकिन कहा कि आपको ये शिक्षा चैतन्य महाप्रभु की पता नहीं है, ना नियमित स्मरण काल, कृष्ण नाम का उच्चारण करने के लिए कोई स्थान नियम काल की आवश्यकता नहीं है, कृष्ण नाम तो कीर्तनीय सदा हरि है, निरंतर इसका उच्चारण किया जा सकता है। और उन्होंने कहा कि जो मृत्यु है वो कोई बताकर नहीं आने वाली, मृत्यु तो किसी भी क्षण आ सकती है, आप नेचर का कॉल अटेंड करते हुए भी मर सकते हो, तो आपको कृष्ण नाम क्या करना चाहिए, निरंतर लेना चाहिए। इसलिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज को पूछा कि क्या चीजें हमें सदैव याद रखनी चाहिए जीवन में, तो उन्होंने कहा दो चीजें हमें याद रखनी चाहिए जीवन में, क्या, मृत्यु और हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। उन्होंने कहा लाइफ में हमेशा कुछ याद रखना है, तो एक तो भगवान का नाम और दूसरा है मृत्यु। ये जब दोनों चीजें हम याद रखेंगे तो हमारे भक्ति में तीव्रता आएगी, नहीं तो भगवत भक्ति क्या चल रही है, चलती का नाम गाड़ी, आने दो मंडे तब क्लास के बारे में सोचते हैं, आने दो संडे, हम तो संडे डिवोटी या मंडे डिवोटी, बाकी दिन में डिवोटी नहीं, ऐसा डिवोटी नहीं बनना है हमें, हमें तो एवरीडे डिवोटी होना चाहिए। संडे मीन्स टेम्पल डे नहीं है ना, हम क्या है, संडे मीन्स टेम्पल डे, संडे आए या मंडे आए तो डिवोटी। हाँ, तो ऐसे करेंगे तो हम तीव्रता नहीं ला सकते अपने भजन में, अपनी सेवा में, अपनी साधना में। तो क्या करना होगा, जब हम इन दो चीजों को याद रखते हैं, उन्होंने कहा भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ने, मृत्यु को जब हम याद रखते हैं तो हमें फिर हम सोचते हैं कि मेरे पास बहुत कम समय है, मुझे क्या करना चाहिए, कृष्ण नाम अधिक लेना चाहिए, कृष्ण नाम को अधिक टाइम देना चाहिए। और जब हम कृष्ण नाम का उच्चारण करते गंभीरता से अटेंटिवली, तो फिर हम सोचते हैं, फिर हमें मृत्यु से भय नहीं रहता, और हमें सोचना चाहिए कि टाइम बहुत कम है। अभी जैसे दिल्ली जू में रिसेंटली क्या हुआ था, एक शेर, किसी ने मुझे वो वीडियो फॉरवर्ड किया, तो मैं देख के ही मैंने सोचा ये तो हम सबके साथ है, ऐसे नहीं कि वो शेर उसके लिए उसको उठा लिटरली कैसे ले जा रहा था, जैसे कोई हिरन को इजीली उठा के शेर ले जाता है, वैसे एक ह्यूमन को, एक मनुष्य को उठा के ले जा रहा है, आप सोच सकते हैं। तुम सोचना चाहिए कि हम भी शेर के बहुत नजदीक है, नेक्स्ट पर्सन कौन है, मैं हूं, ये भावना लाएंगे तो हमारे भगवत भजन में तीव्रता आ सकती है, अन्यथा हम भगवत भक्ति में तीव्रता नहीं ला सकते। तो छोटे से बालक ने इतनी बड़ी चीज कही, वो डिवोटी ने कहा कि वास्तव में अब इतनी अमूल्य चीज मुझे अपने रियलाइज करवाई है कि मृत्यु तो कभी भी आ सकती है और कृष्ण नाम तो निरंतर लेना चाहिए। तो ये चीज जाकर उस डिवोटी ने, उस भक्त ने चैतन्य महाप्रभु को बोली, चैतन्य महाप्रभु ने कहा अच्छा ये छोटा सा बालक भगवान नाम के सार को जानता है, भगवान नाम की महिमा को जानता है, बुलाओ बुलाओ उसे। चैतन्य महाप्रभु ने बुलाया और उसको
अपनी माला पहनाई और उन्होंने कहा कि आज से ये गोपाल नहीं है, आज से क्या हो गया है, गोपाल गुरु। जो भी भगवत नाम की महिमा को जानता है, भगवत नाम को गंभीरता से लेता है, वो वास्तव में जगत का आचार्य है। इसलिए हरिदास ठाकुर को सनातन गोस्वामी ने कहा कि ये हरिदास ठाकुर संसार में तो कई सारे लोग हैं, कई सारे लोग अपने आप को गुरु या आचार्य कह के अपना प्रचार कर रहे हैं, लेकिन असली आचार्य या असली जगत गुरु कौन हो? आप हो, क्योंकि आपका अनुराग भगवान के पवित्र नामों में सर्वाधिक है। और केवल आपका अनुराग ही नहीं, केवल आप आचरण ही नहीं करते बल्कि आप प्रचार भी करते हो। आचार प्रचार यही दो ही कार्य, कि आप आचरण और प्रचार दोनों कार्य करते हो, इसलिए आप जगत के आचार्य या जगत गुरु हो। तो इस प्रकार से वो छोटा सा बालक इतना महान चैतन्य महाप्रभु का प्रिय बन जाता है। तो फिर चैतन्य महाप्रभु के और एक भक्त थे जिनका नाम था अभिराम ठाकुर। क्या नाम था? आपको पता है अभिराम ठाकुर के बारे में? अभिराम ठाकुर नित्यानंद प्रभु के पार्षद थे, चैतन्य महाप्रभु के कुछ क्लोज पार्षद हुआ करते थे, नित्यानंद प्रभु के कुछ द्वादश 12 पार्षद हुआ करते थे, द्वादश गोपाल जिन्हें कहते हैं, उनमें से एक अभिराम ठाकुर थे। अभिराम ठाकुर ऐसे डिवोटी थे कि कोई 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 शोबाजी कर रहा है भक्ति का, या फिर धन कमाने के लिए मूर्ति की पूजा कर रहा है तो उसके घर चले जाते थे, और वो जाकर क्या करते थे, केवल प्रणाम करते थे उस मूर्ति को। यदि वो मूर्ति केवल दूसरा हेतु छोड़कर पूजा हो रही है कि ना लोग दक्षिणा डालेंगे, डोनेशन देंगे, हाँ इस कारण में क्या कर रहा हूँ, मूर्ति की सेवा कर रहा हूँ विग्रह की, इवन मंदिर में भी, तो वो जब प्रणाम करेंगे उस विग्रह को, मूर्ति को, तो वो मूर्ति तुरंत ही टूट जाती थी। इवन घर की शालिग्राम शिलाएं भी कोई शोबाजी करके, शो बोटल डिवोटी होता है ना, शो बोटल डिवोटी मीन्स कभी कभी वो प्रकट होता है प्रोग्राम में, और आएगा तो कैसे, पूरे सब कुछ दिल कंठी सब कुछ धारण करके आएगा, लेकिन कब रेगुलर बुलाओ सेवा के लिए बुलाओ तो नहीं आएगा। बड़े बड़े फेस्टिवल्स में उसका प्राकट्य होगा, तो ऐसे शो बोटल डिवोटी नहीं। जैसे अभिराम ठाकुर फिर ऐसे ऐसे लोगों को प्रणाम करते थे तो वो व्यक्ति मर जाता था। क्या हो जाता था? तो उनको पता चला कि जगन्नाथपुरी में छोटा सा बच्चा इतना बड़ा भक्त हो गया है, सारे उसकी प्रशंसा कर रहे हैं, अभी जाता हूं मैं उसके पास, सही में ग्रेट डिवोटी है, चेक करता हूं। तो ये बंगाल में रहा करते थे, जब जगन्नाथपुरी के भक्तों को पता चला कि वो बंगाल से जगन्नाथपुरी आ रहे हैं केवल गंभीरा में ये छोटा सा बालक गोपाल को प्रणाम करने के लिए, सारे भक्त चिंतित हुए, क्योंकि सारे भक्तों को प्रेम किनसे था, वो छोटे से गोपाल से था जो गोपाल गुरु थे। क्योंकि सब प्रार्थना करने लगे कि वह राधाकांत डीटी है, कि भगवान आप इनकी रक्षा करो। फिर चैतन्य महाप्रभु ने सबको जाकर बताया। तब तक अभिराम ठाकुर आ गए थे। अभिराम ठाकुर आए और उन्होंने पूछा, ये गोपाल कहाँ है, गोपाल बताओ मुझे, उसको मिलना है। तो गोपाल ने सोचा अभी क्या करूं मैं, हाँ तो वो तुरंत चैतन्य महाप्रभु के पास गए। चैतन्य महाप्रभु बैठे थे, जाकर उनकी गोद में बैठे। कहाँ बैठे? चैतन्य महाप्रभु ने कहा भी कि आप क्या करो, मेरे गोद में बैठो। चैतन्य महाप्रभु ने उनको गोद में लिया। अभिराम ठाकुर एक प्रणाम किया, हजारों भी प्रणाम कहे तो गोपाल को कुछ हुआ नहीं, क्योंकि उन्होंने किसका शरण ली थी, चैतन्य महाप्रभु की। अभिन्नत्वात् नाम नामिना, दोनों की शरण, कृष्ण के नाम की भी और स्वयं साक्षात कृष्ण के भी। तो इस प्रकार से भगवान उनकी रक्षा करते हैं, जो व्यक्ति वास्तव में भगवान के नामों का आश्रय ग्रहण करता है। इसलिए भगवत नाम के बारे में हमें अधिक से अधिक जानने का प्रयास करना चाहिए। भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ने कहा कि हमारा एक भी दिन ऐसा नहीं जाना चाहिए कि जिस दिन हम भगवान नाम के बारे में कुछ ना कुछ सुने नहीं, कुछ ना कुछ पढ़े नहीं। अब कुछ ना कुछ है, एक छोटा सा कोट हो या कोई स्टोरी हो, भगवान नाम की महिमा को रोज पढ़ना चाहिए, क्योंकि हमें जीवन का सर्वोच्च लाभ क्या है, अंते नारायण स्मृति। मृत्यु के समय मृदंग नहीं बजा सकते, मृत्यु के समय हम करताल नहीं बजा सकते, लेकिन कृष्ण का नाम स्मरण कर सकते हो, कृष्ण का नाम चिंतन कर सकते हो, या कृष्ण का नाम आपकी जिह्वा से उच्चारण कर सकते हो। इसलिए भगवान नाम हमारा सबसे करीब एक करीब बांधव बनाना चाहिए, सबसे क्लोज कोई फ्रेंड हमें अपना बनाना चाहिए, तो वो कृष्ण का पवित्र नाम। इसलिए तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा कलियुग धर्म है नाम संकीर्तन। कलियुग का वास्तविक धर्म क्या है? भगवान के नामों का कीर्तन करना, भगवान के नामों का जप करना। जब हम भक्तों के संगति में आते हैं और करताल मृदंग आदि के साथ हरि नाम का उच्चारण करते हैं, तो वो भगवान की सामूहिक सेवा है। कैसी सेवा है? सामूहिक सेवा। लेकिन कृष्ण हर एक भक्त से उसकी पर्सनल सेवा स्वीकार करना चाहते हैं। और भगवान की पर्सनल सेवा हम कैसे करते हैं? हरि नाम का जप करके अपनी माला पर, नहीं कि दूसरे की माला पर। किसकी माला पर? अपनी माला पर हरि नाम का जप एकाग्रता की भावना से भगवत सेवना सेवन का मूड अपने हृदय में धारण करके करेंगे, तो वो वास्तव में कृष्ण की पर्सनल सेवा है, उसमें कोई और नहीं आना चाहिए। हाँ, उस समय कृष्ण और कृष्ण का नाम हम निरंतर करें, क्योंकि भगवान नाम ही हमारा सबसे बड़ा आश्रय है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने जब संन्यास ग्रहण करने वाले थे चैतन्य महाप्रभु नवद्वीप में, तो उन्होंने संन्यास से पहले 5 भक्तों को बोला नवद्वीप में मैं क्या करने वाला हूँ। उन्होंने ऐसे नहीं बोला संन्यास ग्रहण करने वाला हूँ, उन्होंने कहा कि मैं अपनी शिखा और जो जनेऊ है उसका त्याग करने वाला हूँ। उस समय वैष्णव संन्यास नहीं हुआ करता था। कौन सा संन्यास ग्लोरियस था? मायावादी संन्यास। तो महाप्रभु ने कहा कि मैं अपनी शिखा और अपने जो जनेऊ है उसका त्याग करने वाला हूँ जल्द ही। तो जितने भक्त चैतन्य महाप्रभु से प्रीति रखते थे वो दुखी हो गए, रोने लगे। और उन्होंने घर में बताया नहीं, अभी अभी शादी हुई थी उनकी, 1 साल भी नहीं हुआ होगा, विष्णु प्रिया से विवाह हुआ था और अकेले उनकी माता थे सच्ची माता। तो उन दोनों को भी पता चला कि निमाय अभी संन्यास ग्रहण करने वाला है। तो एक दिन उस रात्रि में जिस मतलब दूसरे मॉर्निंग में महाप्रभु छोड़ के चले जाने वाले थे, उसके पहले दिन जैसे सोचो कल जाने वाले आज की जो रात्रि है, अचानक नवद्वीप में क्या हुआ कि हर एक भक्त सुबह से लेकर चैतन्य महाप्रभु को मिलने आ रहा था, छोड़ने से पहले नवद्वीप छोड़ने से पहले मिलने आ रहा था, कुछ ना कुछ भेंट लेके आ रहा था, माला लेके आ रहा था, फ्रूट्स लेके आ रहा था, हर कुछ ना कुछ चीज लेके आ रहा था। तब जब संध्या का समय हुआ, सबसे लेट नाइट हो गई, तब एक डिवोटी आया और वो आखिरी भक्त था। वो कौन थे? कोलावेचर श्रीधर। कौन थे? नाम सुना है ना कोलावेचर श्रीधर का? तो कोलावेचर श्रीधर जिनके पास भगवान चैतन्य को देने के लिए कुछ नहीं था, जिनके घर एक घास की झोपड़ी थी और जिनके घर में एक भी बर्तन नहीं था, बर्तन एक लोहे का पात्र था, वो सब कुछ था उनका। हाँ, उन उसमें पानी पीना या जो भी यूज करने वही पात्र था। और उनके पास एक ही धोती थी जिसमें 17 छेद थे। कितने छेद? इतना सब होने के बावजूद भी वो कभी असंतुष्ट नहीं थे, वो हमेशा क्या थे? संतुष्ट थे। यही तो चीज वामन देव ने कही, जब वामन छोटे से ब्राह्मण ब्रह्मचारी गए जब बलि महाराज का यज्ञ हो रहा था उस स्थान में, तो बलि महाराज ने कहा मैं इतना ऐश्वर्यवान हूँ, इतने नर्मदा के तीर पर इतना बड़ा यज्ञ आयोजन कर रहा हूँ, हे बटो ब्राह्मण क्या चाहिए तुम्हें? तो उन्होंने कहा मुझे ना 3 पग भूमि चाहिए। अरे ब्रह्मचारी हो, मैं सुंदर पत्नी दे सकता हूँ, बर महल दे सकता हूँ, इतनी छोटी सी सोने आप एक जगह सो सकते हो, केवल सोने के लिए कितना जगह चाहिए? 3 पग भूमि में हम सोते हैं ना, लेकिन हम बड़ी बड़ी आशा करते हैं। तो उन्होंने कहा इतना बड़ा मैं हूँ, मेरा तो अपमान कर रहे हो मुझसे एक छोटी सी भूमि की याचना करके। तो वह वामन छोटे से ब्रह्मचारी बालक थे, उन्होंने कहा व्यक्ति जो लोभी या ग्रेडी है उसको संसार का सारा धन सारा ऐश्वर्य देकर भी वो कभी संतुष्ट नहीं हो सकता। तो इस प्रकार से वामन देव भी वही शिक्षा हमें प्रदान करते हैं कि एक व्यक्ति सारा धन सारे जगत का अर्जन करके भी वो कभी संतुष्टि अनुभव नहीं कर सकता, वो सदैव असंतुष्ट रह सकता है। तो कोलावेचर श्रीधर जिनके पास कुछ भी नहीं था वो पूरी रात्रि में कृष्ण नाम का कीर्तन किया करते थे जोर जोर से, और उनके पड़ोसी कहते थे कि ये तो हमेशा भूखा रहता है, इसको खाने के लिए कुछ नहीं है, तो जोर से जब भूख लगती है तो ये क्या करता है, कीर्तन करता है। क्या करता है? हाँ, या वो कहते थे ये ऐसी इनकी स्थिति है। तो जब आप कीर्तन में भी देख सकते हैं कई बार डिवोटीज सोचते हैं, जैसे रुक्मिणी के बारे में वर्णन आता है, वो कृष्ण के बारे में सुना करते थे छुप छुप के, पर्दे के पीछे छुप जाते थे, और क्या करते थे, उनके घर में नारद और डिवोटीज आते थे और राजा भीष्मक से जब चर्चा होती थी तो पीछे पर्दे के पीछे जाकर सुनते थे। और हाँ, कृष्ण कथा न सुनने के लिए क्या करते हैं, हाँ छुप जाते हैं, कुछ ना कुछ बहाना मारते हैं। तो उसी प्रकार से कीर्तन में भी होता है, कई बार डिवोटीज कहते कि प्रभु जी क्या प्रवचन देते आप। हाँ, तो हमने कहा आज बहुत प्रशंसा कर रहे थे, वो कहते जब आप प्रभुपाद के या हरे नाम के बारे में बोलते हैं ना तो और अच्छा लगता है, क्यों, क्योंकि उस समय लेक्चर खत्म होने वाला होता है ना। कोई भी व्यक्ति प्रवचन देता है तो जो एंड करना होता है तो कहा घुमा के लाएगा, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो जब क्लास एंड हो रहा है तो पता, कोई भी टॉपिक आगे हो रहा हो जो मर्जी हो, लेकिन जब पता चलता है श्रोताओं का भी क्लास खत्म होने वाला है, कुछ ना कुछ हरि नाम का उदाहरण या फिर कुछ हरि नाम के बारे में बोला जाता है, प्रभुपाद के बारे में बोला जाता है, तो समझना चाहिए क्या हो रहा है अभी, क्लास ओवर। तो फिर अटेंटिव सुनते हैं। हाँ, वैसे कीर्तन के साथ होता है, कीर्तन शुरू होता है तो हम इतने नाचते नहीं है, लेकिन जैसे जय प्रभुपाद आता है तो पूरा तीव्रता से चिल्लाने लगते हैं, नाचने लगते हैं और प्रार्थना करते हैं, प्रभुपाद आप बहुत कृपालु हो, जल्दी कीर्तन खत्म हो जाए क्योंकि उसके बाद तो प्रसाद है। तो ऐसे हमारी स्थिति है। ये दो पॉइंट्स बड़े पावरफुल है। हाँ, एक तो जोर से प्रभुपाद प्रभुपाद क्योंकि डेड एंड होने वाला है और क्लास का भी वैसे ही है। तो यहाँ उनको कोई भूख नहीं लग रही थी जिसके कारण वो जोर जोर से कीर्तन कर रहे थे। कोलावेचर श्रीधर, कोलावेचर श्रीधर को भगवान नाम हमें स्वाभाविक रूप से क्या थे, रुचि थी। तो ऐसे कोलावेचर श्रीधर का वर्णन चैतन्य महाप्रभु करते हैं, और ये कोलावेचर श्रीधर आखिरी व्यक्ति थे जो चैतन्य महाप्रभु को उस रात्रि में मिलने आए आखिरी में, और उन्होंने सोचा क्या लेके जाऊं मैं चैतन्य महाप्रभु को। तो क्या सोचा उन्होंने, जैसे प्रभुपाद ने कहा जब आप किसी साधु या गुरु से मिलने जाते हो या भगवान के मंदिर जाते हो तो आपको खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, कुछ ना कुछ गिफ्ट कृष्ण के लिए ले जाने चाहिए, जिससे क्या होता है, प्रेम का संबंध स्थापित होता है। जैसे हम किसी रिलेटिव्स के घर जाते हैं, उनके घर में बच्चे होते हैं तो हम कुछ ना कुछ लेके जाते हैं, है ना, नहीं नहीं बच्चों को मिलेंगे ना कुछ ले जाते हैं, तो वैसे ही कृष्ण के साथ है। तो वो जो कोलावेचर श्रीधर ने सोचा मेरे पास कुछ नहीं है क्या ले जाओ, तो उनकी जो दृष्टि है अपने घर के छत के ऊपर गई, छत के ऊपर देखा एक पंपकिन था, क्या कहेंगे कद्दू, हाँ कद्दू था, तो उसको उन्होंने तोड़ा, तोड़ के गए, उठा के ले गए, हाँ प्रेम का भार है। चलते चलते गए सची माता के आंगन में, देखा चैतन्य महाप्रभु निमाय पंडित चैतन्य महाप्रभु सची माता के साथ बैठे हैं, और उन्होंने कहा चैतन्य देव आपके लिए मेरी ओर से भेंट है, क्या लेके आए थे, कद्दू, आपको कोई कद्दू गिफ्ट करे आपको अच्छा लगेगा, कहाँ से कद्दू उठा के ले आया है। लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने उसको स्वीकारा, चैतन्य महाप्रभु आनंदित हुए, और फिर उसी समय एक दूसरा डिवोटी आया जो दूध लेके आया था, क्या लेके आया था, तो चैतन्य महाप्रभु अपनी माता को कहते हैं कि इसका स्वीट बनाओ, क्या बनाओ, एक कुछ एक व्यंजन बनाओ। तो विष्णु प्रिया फिर कद्दू और मिल्क को बना लेकर एक अच्छा स्वीट बनाती है, और वही चीज चैतन्य महाप्रभु ने नवदीप में आखिरी खाई है। आखिरी चीज किस कोई चीज महाप्रभु ने खाई है नवदीप में, तो वो क्या खाया था? कोला बेचा श्रीधर ने दिया हुआ जो कद्दू पंपकिन, चाहे वो लंबा वाला था या गोल वाला था मुझे पता नहीं, तो वो ग्रहण किया था। और फिर चैतन्य महाप्रभु उसको ग्रहण करके ले जो है रेस्ट करने लगे, तो विष्णु प्रिया के हृदय में बहुत दर्द हो रहा था कि सब लोगों से मैं सुन रही हूँ हाँ मेरे पति संन्यास लेने वाले हैं। जैसे कई जो गृहस्थ भक्त हैं टेंपल में आदि इन्वॉल्व हो जाती है जाते हैं, तो पत्नी के हृदय में डर बना रहता है एक दिन या धीरे धीरे करके खिसकेंगे तो नहीं हाँ मेरे लाइफ से गायब तो नहीं हो जाएंगे, तो बड़ा चिंता होती है। तो वैसे विष्णु प्रिया को था, विष्णु प्रिया ने जब महाप्रभु लेटे थे गए और उनके चरणों को अपने गोद में लिया, उसको दबाने लगे और दबाते हुए उनके आंखों से आंसू की धारा बह रहे थे, और जब वो आंसू बह रहे थे गरम गरम आंसू, वो कहाँ गिर रहे थे? चैतन्य महाप्रभु के चरणों में। चैतन्य महाप्रभु जल जाते, विष्णु प्रिया क्या हुआ, क्यों रो रही हो? तो जब महाप्रभु उठे तो उनकी उन्होंने क्या किया, उस महाप्रभु का हाथ ऐसे पकड़ा और अपने सर में रखा, बताइए बताइए आप संन्यास ग्रहण करने वाले हैं? ये कहां से बात सुनी, ये संन्यास विन्यास में कुछ लेने वाला नहीं हो, किसने झूठा बोला होगा आपको, चलो सो जाते हैं, सो जाओ। तो फिर से महाप्रभु सो जाते हैं, लेकिन विष्णु प्रिया को नींद नहीं आ रही थी, उसका हृदय तो बहुत दर्द हो रहा था हृदय में। फिर थोड़ी देर के बाद उठती है, क्रंदन करने लगती है, चैतन्य महाप्रभु फिर जल जाते निमाय पंडित, और फिर वो कहती है कि अब सच सच बताइए, फिर से उनका हाथ अपने सर पे रखते कहते सच सच बताइए क्या आप संन्यास ग्रहण करने वाले हो? तो उन्होंने कहा हाँ मैं क्या करने वाला हूँ, संन्यास ग्रहण करने वाला हूँ। और फिर बेड़ के ऊपर ही पूरी भागवतम क्लास, पूरा इतना बड़ा लेक्चर दिया कि सारा भौतिक जगत, भौतिक आसक्ति, कई बार हम प्रवचन में सुनते हैं ना बड़ा, जन्म मृत्यु जरा व्याधि अशाश्वतम दुखालयम, सुनते कि नहीं सुनते? ये शब्द हमारे सपने में भी आते होंगे, ये सारे ऐसे ऐसे शब्द, इसको उनके कुछ शब्द रेगुलर है हाँ जो सपने में भी आ जाते हैं डिवोटीज के। तो महाप्रभु ने इतनी पावरफुल उनको शिक्षा दी, और चैतन्य महाप्रभु ने कहा मेरा तो आविर्भाव सारे जगत को कृष्ण भक्ति प्रदान करने के लिए हुआ है, और तुम क्या हो, मेरी सहायता करने के लिए प्रकट हो गई हो, इसलिए हे विष्णु प्रिया तुम हमेशा जानो कि संसार में दो चीजें ही शाश्वत है और बाकी सारी चीजें क्या है, अशाश्वत है, और इन दोनों चीजों का ही व्यक्ति को आश्रय ग्रहण करना चाहिए अपने जीवन में, इन दोनों के अलावा किसी और चीज का शेल्टर या आश्रय ग्रहण करना अनुचित है। तो विष्णु प्रिया ने पूछा क्या है वो दो चीजें, तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि भगवान के भक्त और कृष्ण का पवित्र नाम। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जब चैतन्य महाप्रभु ने ये चीज कहे हाँ, तो विष्णु प्रिया गंभीर हो जाती है, और दूसरे दिन उसी मॉर्निंग में चैतन्य महाप्रभु अपने उस स्थान को छोड़ते हैं और घर से बाहर निकल ही रहे थे, तो वो अपनी वो उनको कौन दिखाई देता है, सची माता, और वो कहाँ बैठी थी, दरवाजे में, पूरी रात हर रात में वहीं बैठा करते थे और रोया करते थे, किसके विरह में, चैतन्य महाप्रभु के निवास संन्यास ग्रहण करके चले जाएंगे हाँ, तो वो रोया करती थी। फिर महाप्रभु जब निकल रहे थे घर से बाहर अर्ली मॉर्निंग, जैसे हम मंगल आरती में जाते उस समय ब्रह्म मुहूर्त में, तो उन्हें अपनी माता को रोते हुए देखा और सची माता को प्रणाम किया, उनकी परिक्रमा की, उनका आशीर्वाद लेकर हाँ चैतन्य महाप्रभु निकल पड़े बाहर, और जाकर गंगा को पूर्ण नाव से पार नहीं किया क्योंकि वो पागल हो गए थे, किस चीज के लिए, संन्यास ग्रहण करने का भूत उनके सर के ऊपर सवार हुआ था। वो नदी में, गंगा नदी में उन्होंने जंप मारे और उस साइड में निकल गए, और दौड़ते दौड़ते कई किलोमीटर वो कटवा गए, कटवा जो एक स्थान जहां चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास ग्रहण किया, वहां गए तो किनसे संन्यास ग्रहण किया उन्होंने, केशव भारती से। केशव भारती जो सन्यासी थे, कटवा नामक जो गांव था या सिटी था, गंगा के किनारे उनकी कुटिया थी, आश्रम था, वहां गया और केशव भारती से कहा कि आप मुझे सन्यास दीजिए। केशव भारती ने जब देखा ये युवक जिसके बाल सुवर्ण वर्ण के थे, अंग कांति सुवर्ण वर्ण की थी, और इतना अजानुलंबित भुजा, उनकी भुजाएं घुटनों तक लंबी थी, और सारे जगत में सर्वाधिक सुंदर युवक था, और सारे लोग उनसे प्रीति रखते थे। उन्होंने कहा इनको सन्यास दूंगा तो सारे लोग मेरी कुटिया जला देंगे, है ना। उन्होंने कहा देखो पहले अपनी माँ का और पत्नी का परमिशन ले क्या हो। इस्कॉन में भी किसी गृहस्थ को सन्यास लेना होता है तो जीबीसी का ये नियम है, सबसे किसका लेटर ले आओ परमिशन लेटर, पत्नी का। हाँ, क्योंकि भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज के समय में कोई मंदिर ज्वाइन करता था तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती बहुत खुश हो जाते थे, लेकिन मंदिर छोड़ के चला जाता था तो भक्ति सिद्धांत महाराज को बहुत दुख लगता था। एक बार एक युवक ने ब्रह्मचारी के रूप में मंदिर ज्वाइन किया और उनके घर वाले आने वाले थे, विशेष रूप से माँ आने वाले थे। अभी माँ आती है रोते हुए तो कौन सा बालक है जिसका हृदय द्रवित नहीं होगा। तो एक डिवोटी की माँ अपने बेटे को लेने के लिए मठ में आ रही थी, मायापुर में चैतन्य गौड़िया मठ। तो वहां वो भक्त ने सोचा भक्ति सिद्धांत सरस्वती गुरु महाराज में कहां छुपो बताइए कौन आ रहे हैं, मेरी माँ आ रही है। तो वो बालक तो भक्ति सिद्धांत महाराज एक ऐसे आसन में बैठे थे और नीचे खाली जगह थी। भक्ति सिद्धांत महाराज ने कहा इसके नीचे छुप जाओ और ऊपर से कवर कर दिया। उनकी माँ आ गए तो भक्ति सिद्धांत महाराज कहते वो माँ नहीं, वो क्या थी, माया थी। जब वो जाने के बाद भक्ति सिद्धांत महाराज ने उनसे बात की, और एक बार तो ऐसे हुआ भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज के एक शिष्य थे जिनको घर वाले जबरदस्ती उठा के ले गए और विवाह के मंडप में खड़ा कर दिया। कहाँ खड़ा कर दिया, टेम्पल से उठाया सीधा और विवाह के मंडप में खड़ा किया। मैं पुणे में था शुरुआत के दिनों में, ज्वाइन नहीं किया था, तो हमारे भक्त वहां ब्रह्मचारी ज्वाइन किया था आश्रम, तो उनके फादर मिलिट्री में थे। तो देखा एकलौता बेटा इतना इंजीनियरिंग वगैरह किया हुआ, मंदिर में फुल टाइम बना है, पूरे मिलिट्री के जीप और गन्स वगैरह लेकर वो मिलिट्री के अपने फ्रेंड्स को लेके आए थे टेम्पल, किसको ले जाने के लिए, हाँ वो डिवोटी को ले जाने के लिए। हाँ, लेकिन वो जा गए नहीं, वो भी बड़े पक्के थे, अभी वो वहाँ टेम्पल के मेन एक अध्यक्ष के रूप में वो सेवा करते हैं। तो इस प्रकार से भक्ति सिद्धांत महाराज ने देखा कि उस भक्त को लेके सीधा विवाह मंडप में खड़ा कर दिया है, तो भक्ति सिद्धांत महाराज ने अपने दूसरे हट्टे गट्टे ब्रह्मचारी को बुलाया जो बड़े तगड़े थे ना 7-8, उनको कहा जाओ उसको मंडप से उठा के यहाँ ले आओ। तो भक्ति सिद्धार्थ महाराज ने भेजा तो ये तगड़े ब्रह्मचारी गए और उसको सबके सामने उठा के गाड़ी में ले आए। अभी भी वहां जो लड़की वाले थे वो रोने लगे कि हमारे लड़की का जीवन बर्बाद हो जाएगा, उसको तो हल्दी वगैरह सारी तैयारियां हो गई है। तो भक्ति सिद्धार्थ महाराज ने कहा ये नहीं, मैं दूसरे को भेजता हूँ। तो ये जो घटना हमने उनसे सुनी थी जिनको विवाह मंडप में खड़ा किया था वो सन्यासी बने, आगे चलकर क्या बने मठ में भक्ति सिद्धांत के महान सन्यासी डिवोटी बने। तो बता रहे थे कि मेरे जीवन में क्या घटना, हाँ वही थे ऐसी चीज लोकनाथ स्वामी महाराज के जीवन में भी घटे थे। हाँ, उनको भी उनके ब्रदर वगैरह ले गए मुंबई से उठाकर टेम्पल से और वह विवाह की तैयारी हो गई। उनके जीवन में क्या हुआ कि वो जो क्या कहेंगे लड़की जो विवाह के लिए तैयार थी वो मंडप से ही भाग गई, तो लोकनाथ महाराज कहते कि मैं बच गया। आज देखो कितना अमेजिंग प्रचार कर रहे हैं। तो ऐसे ही एक डिवोटी के साथ हुआ, भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज के ग्रस्त भक्त थे, उन्होंने सन्यास ले लिया भक्ति सिद्धांत सरस्वती से, लेकिन अपने पत्नी का परमिशन नहीं लिया था। क्या नहीं लिया था, हाँ सन्यास तो ले लिया, आश्रम में रहने लगे। एक दिन पत्नी बड़ी गुस्से में आकर आ गई, हाँ पावरफुल होती है ना श्री दुर्गा देवी। तो आ गए और भक्ति सिद्धांत सरस्वती के महाराज के सामने अपने पति जो सन्यासी थे उसका हाथ पकड़ा और उठा के ले गई। घर में ले गए तो भक्ति सिद्धांत महाराज के आंखों से आंसू आए। उन्होंने कहा कि मैं एक जीव को बचा नहीं पाया, ऐसे उन्होंने कहा। हाँ, तो इस प्रकार से इस्कॉन में भी कोई संन्यास ग्रहण करना चाहता है तो सबसे पहले उसको किसके लेटर लाना पड़ता है, अपने पत्नी का। तो महाप्रभु को फिर परमिशन मिली, महाप्रभु को केशव भारती ने कहा जाओ अपनी माता का और पत्नी का परमिशन लेके आओ, विशेष रूप से माता का। तो चैतन्य महाप्रभु तो फिक्स थे, भजते मां दृढ़ व्रता, भक्त कोई व्रत ग्रहण करता है तो उसमें फिक्स हो जाता है, ये उसका गुण है। तो चैतन्य महाप्रभु निमाए वहां से दौड़ने लगे वापस नवदीप की ओर। तो केशव भारती ने कहा ये व्यक्ति लड़का पागल हो गया है, संन्यास लेने के लिए कुछ भी कर सकते है, रुको रुको। उन्होंने रुकाया और कहा आ जाओ मैं तुम्हें संन्यास दे देता हूँ। और संन्यास लेने के लिए कहा कि जाओ स्नान करो और अपना सर मुंडन करके आ जाओ, फिर हम संन्यास सेरेमनी करते हैं। तो जब चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु, चंद्रशेखर आचार्य, ऐसे कई सारे डिवोटी इस गंगा में स्नान करके आते हैं एक वृक्ष के नीचे, और वहां उनका मुंडन करना था। तो एक बार्बर था, एक नाई था जिनका नाम मधु था। क्या नाम था? तो मधु को नया वस्त्र दिया गया, मधु को कहा कि आप अभी महाप्रभु का मुंडन करो, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु के बाल बहुत बड़े बड़े थे और बहुत सौंदर्यवान थे वो। तो जब उनका मुंडन करने के लिए सुबह स्नान करके बिठाया था चैतन्य महाप्रभु को, और इस सेरेमनी को देखने के लिए सारा बंगाल वहां आ गया था, और हर कोई व्यक्ति देख रहा था और रोते जा रहा था। और उसी में श्रीनिवास आचार्य, जिन्होंने षड्ग स्वामी अष्टकम लिखा है, उनके जो पिता हैं वो भी थे, गंगाधर भट्टाचार्य, जिनका नाम बाद में चैतन्य दास पड़ा। जब उन्होंने इस सेरेमनी देखा तो वो रोने लगे और पागल से हो गए, और तब से उनके मुख में एक ही नाम निकलने लगा, चैतन्य चैतन्य चैतन्य। तो वो मधु जो नाई था वो हाथ कप रहा था उसका हाथ, और वो रो रहा था। वो महाप्रभु का हेडशिप करना उसके लिए कठिन हो रहा था। सुबह से दोपहर हो गई, शाम हो गई, फिर भी उससे वस्तुरा चल नहीं रहा था, लेकिन फाइनली उसने कर दिया। उसने कहा आज से मैं प्रतिज्ञा करता हूँ, आज की आखिरी हेडशिप है मेरे लाइफ का, इसके बाद अपना बिजनेस चेंज, कोई और कार्य में करूंगा। तो इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु संन्यास ग्रहण करते हैं। संन्यास ग्रहण करने का प्रमुख उद्देश्य क्या था चैतन्य महाप्रभु का? सारे जगत को कृष्ण नाम और कृष्ण की सेवा प्रदान करना, मतलब अपना जीवन दूसरों की सेवा में अर्पित करना, ये ग्लोरियस लाइफ है, और वही कृष्ण चाहते हैं। इसलिए कृष्ण सारे जीवों को यही शिक्षा देते हैं और सबको प्रेरित करते हैं कि जितना अधिक हम अपने लिए जिएंगे उतना ही अधिक हम असंतुष्ट रहेंगे, अशांत रहेंगे, दुखी रहेंगे। हमें किसके लिए जीना सीखना चाहिए? दूसरों के लिए जीना सीखना चाहिए। तब आप देखेंगे कि हम ऐसे आनंद और सुख की अनुभूति करते हैं कि जगत के जो भौतिक सुख है वो हमें तुच्छ प्रतीत होते हैं। यही तो चीज भागवत में हमें सिखाई है। जब वत्रासुर को मारने के लिए इंद्र ने भगवान से प्रार्थना की तो भगवान ने कहा कि ये वत्रासुर मरने वाला नहीं है, इसको मारने के लिए तो एक ही उपाय है कि आप सब जाओ किसके पास? दधीचि ऋषि के पास। उनके पास जाकर मांगो कि हमें आपका शरीर दान में चाहिए, और वो शरीर लेकर उस शरीर में से हड्डियां निकालो और हड्डी से वज्र बनाओ, और उससे वत्रासुर मारा जा सकता है। ये सारे देवतागण स्वर्ग से गए दधीचि मुनि के आश्रम में। दधीचि मुनि वहां भगवान का भजन कर रहे थे, ये देवतागण गए, उनको प्रणाम किया और उनको कहा हमें ना डोनेशन चाहिए, जैसे आप जन्माष्टमी जाते हो ना डोनेशन मांगने के लिए, या फिर बुक डिस्ट्रीब्यूशन के समय ऐसा कोई देखा है व्यक्ति फंड कलेक्शन करने वाला कि हमें ना आपका बॉडी चाहिए दान में, किसी का हिम्मत है मांगने के लिए? हम अपनी उंगली भी नहीं देना चाहते, नाखून भी नहीं देना चाहते। तो वो गए और उन्होंने कहा आपको हमें आपका शरीर चाहिए। तो दधीचि मुनि ने कहा कि इस संसार में आप लोग जानते हो देवता होकर भी कि जब मृत्यु का समय आता है तो व्यक्ति मृत्यु की वेदना से मूर्छित होता है अपने बेड पर, और आप मुझे मारण कर मेरा शरीर दान में मांग रहे हो, उन्होंने कहा इस संसार में व्यक्ति को कोई अधिक सबसे अधिक चीज प्रिय है तो वो अपना शरीर है। इवन साक्षात विष्णु भी आपसे आपका शरीर मांगने आ जाए दान में तो भी आप विष्णु को भी दक्षिणा या ये शरीर की भिक्षा नहीं दे सकते, तो आप मेरे पास आए हो। तो देवता चतुर थे, देवता ने कहा कि जो परोपकार करने वाला व्यक्ति है वो संसार की कोई वस्तु के अपना शरीर भी देने के लिए तैयार होता है। तो दधीचि मुनि तैयार हो जाते हैं और देवताओं को अपना क्या देते हैं, शरीर। शरीर देना में मृत्यु और देवता को उनके हड्डियों से वज्र बनाते हैं इंद्र। तो इस प्रकार से वो व्यक्ति महान है जो वास्तव में दूसरों के हित के लिए जीवित है। इसलिए भक्त के 26 गुण है, कितने गुण है, 26। इन 26 गुणों से भक्त सुशोभित होता है हाँ तो और अधिक सुंदर लगने लगता है। उसमें से एक गुण है सर्व उपकारक, कौन सा गुण है, हाँ तो हमेशा दूसरों के हित में लगा रहता है। इसलिए प्रभुपाद लेटर्स लिखते थे तो उसके आखिर में क्या लिखते थे, हाँ यूर एवर वेल विशर, आपका हमेशा हाँ शुभ चिंतन। प्रभुपाद अपने लिए नहीं जीवित रहे, अपने लिए अमेरिका नहीं गए, किसके लिए, सारे दूसरे जीवों के हित के लिए। तो इस प्रकार से भगवान या भगवान के भक्त हाँ परहिते रता, दूसरों के हित में रत रहते हैं और उनको कृष्ण नाम देते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कृष्ण नाम ही हमारे जीवन में परम धन है जिसके द्वारा हम कृष्ण के प्रिय बन सकते हैं। जब भगवान राम बहुत अधिक चिंतित थे कि कैसे सीता को ढूंढा जाए तो सारी वानर सेना ढूंढने के लिए निकले और फिर हनुमान जब वो सागर को पार करके जंप मार के अशोक वाटिका में पहुंचे तो वहां सीता हैरान हो गई। सीता ने कहा कि रावण को भी अपना विमान से पार करना पड़ा, तुम उस सागर को पार करके कैसे आए हो। तो हनुमान ने कहा कि मेरे पास एक पावरफुल क्या है, वस्तु है, और वो क्या है, भगवान श्री राम का पवित्र नाम जिसका उच्चारण करने मात्र से ये जो सागर है वो भी इतना छोटा हो गया था जैसे गाय का खुर। गाय जब चलती है बारिश के दिनों में मिट्टी में उसका पाव पड़ता है तो जितना वो साइज बनता है जिसमें पानी होता है तो एक बच्चा उसमें जंप मार के जा सकता है। भगवान राम के बारे में कहते हुए हनुमान ने कहा कि मैं भगवान राम के नामों का जप करके या उच्चारण करके इस सागर को सरलता से पार कर सका और इसी कारण से हनुमान भगवान श्री राम के सर्वाधिक प्रिय बने। इसलिए हम कृष्ण के प्रिय बनना चाहते हैं, भगवान से अपने भगवान के प्रति अपने हृदय में तीव्र आसक्ति लाना चाहते हैं, क्योंकि जीवन तभी सफल है जब कृष्ण के प्रति हमारे हृदय में दिव्य प्रेम की भावना का उदय हो, भगवान के प्रति आसक्ति का उदय हो। हम यदि गंभीरता से सोचे कि मुझे सर्वाधिक दिन में मैं किसका स्मरण करता हूँ, क्या मैं किसी व्यक्ति का दिन भर स्मरण करता हूँ या कृष्ण का मुझे स्मरण होता है, उससे हमें पता चल सकता है कि मैं किसके प्रति आसक्त हूँ। आसक्ति का ये लक्षण भी है कि हम जिसके प्रति आसक्त हैं उसी विषयों का हम सर्वाधिक चर्चा करते हैं, उसी विषय की चिंता करते या चिंतन करते हैं। तो हमें अपनी आसक्ति कृष्ण के प्रति बढ़ानी है तो हमें कृष्ण के नाम को भी गंभीरता से लेना चाहिए और जो सर्वाधिक पावरफुल रास्ता है। और जब हम भगवान के नाम को अपने जीवन में गंभीरता से लेंगे तो कृष्ण के हम सर्वाधिक प्रिय बने बन सकते हैं, क्योंकि हम अपने जीवन में ऐसे व्यक्ति को ढूंढ रहे हैं जो हमसे प्रेम करे और हम भी उससे प्रेम करें, हर एक मनुष्य हर एक व्यक्ति। तो वास्तव में हम अलग अलग व्यक्तियों में कृष्ण को ही ढूंढ रहे हैं। बचपन से हम ऐसे व्यक्ति ढूंढ रहे हैं जिससे हम प्रेम करना चाहते हैं और ये भी चाहते हैं कि वो व्यक्ति भी मुझसे प्रेम करे। वो व्यक्ति कौन है, कृष्ण है। इसलिए हम किसी से प्रेम करते हैं या कोई व्यक्ति हमसे प्रेम करता है तो हम पूर्ण प्रेम की अनुभूति हमारे जीवन में अनुभव नहीं करते। वो तभी कंप्लीट है जब हम कृष्ण से प्रेम करने लगेंगे और कृष्ण हमसे प्रेम करेंगे तभी हम उनके प्रिय बन सकते हैं। इसलिए एक बार मैं एक छोटी सी हाँ कथा सुनाकर विराम देता हूँ। एक बार एक व्यक्ति थे जिन्होंने सोचा ये हनुमान तो बहुत जब तब करते या भगवान की इतनी सेवा करते हैं तो ये हनुमान जी से मिलने गए। हनुमान जी से जब मिलने गए तो हनुमान निरंतर भगवान राम के चिंतन में मग्न रहते हैं या सेवा में मग्न रहते हैं। हनुमान कुछ नहीं चाहते कृष्ण की सेवा, कृष्ण के बारे में या भगवान राम के बारे में सुनना या उनकी सेवा, ये उनका प्रमुख विषय है, जीवन का प्रमुख कार्य है। तो व्यक्ति गया और उन्होंने हनुमान को कहा, हनुमान जी आपको पता है भगवान राम के पास एक डायरी है। क्या है भगवान राम के पास? एक डायरी है। उन्होंने हनुमान ने कहा मैं तो बिजी रहता हूँ नामों का उच्चारण करने में, ये मैंने कभी देखा नहीं डायरी वायरी ना कुछ मुझे पता नहीं है। तो उन्होंने कहा आप देखो, और उस व्यक्ति ने यह भी कहा कि मैंने सुना है कि उस डायरी में भगवान राम ने अपने प्रिय भक्तों के नाम लिख के रखे हैं। तो उन्होंने कहा अच्छा हनुमान के सही में? कहते मुझे तो पता नहीं और टाइम भी नहीं मेरे पास ये डायरी खोल के देखने के लिए। कहते आप जाके राम जी से पूछ लीजिए, भगवान राम से। तो व्यक्ति दौड़ के गया अयोध्या जहाँ भगवान राम अपने रूम में बैठे हुए थे। और जब भगवान राम वो डायरी कहाँ है तो भगवान राम ने कहा देखो वहाँ कोने में वो डायरी पड़ी होगी, बड़ी डायरी। तो वो गया देखा इतनी बड़ी डायरी जिसमें खोला, खोल के क्या देखना चाह रहा था? मेरा नाम। किसका नाम? अपना नाम। किसी भी चीज होती है, सेवा होती है या फोटोज होते हैं बिल बोर्ड में, हाँ जैसे लगते हैं ना टेम्पल में आपके सेंटर में, तो हम बहुत सारी चीजें, लेकिन किसको ढूंढते हैं हम वहाँ? किसको ढूंढते हैं? अपने आप को ढूंढते हैं। हमें कृष्ण को ढूंढने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, भक्तों को ढूंढने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, हम किसको ढूंढते हैं? अपने आप को। यह हमारी स्थिति है। तो व्यक्ति इसी भावना से गया था तो भगवान राम ने कहा देखो किसी कोने में पड़ी होगी वो डायरी। वहां वो गए, उन्होंने खोला वो डायरी का कवर, कवर खोल दिया, सबसे पहले नामों की लिस्ट थी, तो सबसे ऊपर किसका नाम था तो उस व्यक्ति का नाम था। किसका था? जो ढूंढने गया था, पूछने गया था। इतना आनंद, आनंद की सीमा ही नहीं रहे। तो उसने सोचा मेरे जैसा डिवोटी इस दिल्ली में, इस दिल्ली में, एक तो इस दिल्ली में और दूसरा क्या है इस दिल्ली में भी नहीं है। तो वो आनंदित होकर गर्वित होकर किसके पास पहुंचा? हनुमान जी के पास। हमें जब कुछ प्राप्ति होती है तो हम इम्प्रेस करना चाहते हैं, है कि नहीं? तब सुख महसूस होता है जब हम इम्प्रेस करते हैं दूसरे को और दूसरे को थोड़ा सा छोटा दिखाते हैं। प्रभु जी आपको तो मृदंग बजाना नहीं आता, आपको तो कीर्तन करना नहीं आता। तो वैसे ही जब ये गया हनुमान जी के पास, हनुमान मग्न है अपनी सेवा में। हनुमान जी को कहा अभी अभी मैं आया हूँ डायरी देखकर भगवान राम के वहां घर में, और उसमें तो मेरा नाम प्रथम है। तो उन्होंने कहा एक ही डायरी देखी आपने? वो बड़ी डायरी थी। हनुमान ने पूछा और एक डायरी है? हनुमान ने कहा छोटी डायरी भी भगवान राम रखते हैं। उसने कहा छोटी डायरी तो मुझे नहीं दिखाई। मैंने जाओ उनको बोलो छोटी डायरी भी दिखाओ। यह जब व्यक्ति दौड़ते हुए गया भगवान श्री राम के पास तो भगवान राम को पूछा कि आपके पास छोटी डायरी भी है? उन्होंने कहा हाँ छोटी डायरी भी है। कहाँ रखी है आपने? तो भगवान राम ने कहाँ रखी थी? यहाँ, हाँ जैसे शर्ट के अंदर भी दूसरा पॉकेट होता है ना, कुछ लोगों को गाँव में देखा होगा, हम बचपन में देखते थे। पैसे छुपा के रखने तो कहाँ? अंदर के पॉकेट में। पैसे यहाँ क्यों रखे जाते हैं? हाँ क्योंकि हृदय है, पैसे से हम इतना प्रेम, जिससे प्रेम करते हो ना उसको कहाँ रखते हो? हृदय के पास। पॉकेट इसलिए वहां होता है, यहाँ क्यों नहीं होता पेट के सामने? हाँ जिससे प्रेम करते हैं उनको कहाँ रखते हैं? हृदय में। तो भगवान राम ने जब हाथ डाला तो डायरी को निकाला, हाँ छोटी डायरी जब निकाली तब उस व्यक्ति ने देखी और उसमें देखा तो सबसे पहले किसका नाम था? हनुमान जी का। तो ये तो इसको चक्कर आने लगी। उन्होंने कहा छोटी डायरी बड़ी डायरी, छोटी डायरी बड़ी डायरी, तो इन्होंने कुछ अंतर क्या है? उन्होंने कहा भगवान श्री राम ने कहा कि इसमें एक ही अंतर है कि जो सतत मेरा स्मरण करते हैं, नामों का उच्चारण करते हैं, उनका नाम बड़े डायरी में होता है, कौन से डायरी में? लेकिन जिनका मैं सतत मैं स्मरण करता हूँ उनका नाम किस में होता है? छोटी डायरी में। तो हम सबको अपना नाम डायरी में किसी ना किसी डायरी में लिखवाने का प्रयास करना चाहिए, हाँ, क्योंकि भगवान रजिस्टर मेंटेन कर रहे हैं। लेकिन हनुमान का नाम किसमें था? हाँ, तो हनुमान की योग्यता क्या थी? अनन्य चेता सततम योमाम स्मरति नित्यशाम तस्याहम सुलभ पार्थ नित्य युक्तस्य योगिना। हे अर्जुन, जो अनन्य भावना से मेरा स्मरण करता है उसके लिए मैं सुलभ हूँ। तो हनुमान के साथ वो था कि हनुमान भगवान श्री राम का सेवा या भगवान श्री राम के नामों का उच्चारण अनन्य भावना से कर रहे थे। कौन सी भावना? कोई भी अभिलाषा नहीं, कोई छुपा हुआ मोटिव नहीं था उनका भक्ति करने में, हरि नाम का उच्चारण करने में। एक ही उद्देश्य था, कैसे मैं भगवान श्री राम को अत्यधिक सुख प्रदान करूं, कैसे उनकी सेवा करूं, उसके बदले में मुझे कुछ नहीं चाहिए। सीता देवी ने उनको हार भी दिया तो टुकड़े टुकड़े कर रहे थे दांतों से। तो भगवान राम ने जब देखा लंका से वापस आने के बाद सबको गिफ्ट्स बांटे जा रहे थे, हाँ, जैसे मैराथन में बांटते हैं हम, जन्माष्टमी की सेवा में बांटते हैं। सारे वानर सेना एक एक करके स्टेज में आ रहे थे, सीता देवी के हाथ से गिफ्ट लेके नीचे जा रहे थे। हनुमान जी को बुलाया तो सोचा क्या दे, भगवान राम अपने चेयर से उठ गए, उठ के सोचने लगे आंखें बंद करके हनुमान को देखकर। हाँ, उन्होंने हनुमान श्री राम ने सोचा तीनों जगत में इस पूरे ब्रह्मांड में वो सब कुछ वस्तु ढूंढने लगे, क्या बेस्ट चीज हो सकती है जो गिफ्ट के रूप में मैं किसको दे दूं? हनुमान को दूं। बड़ी सेवा की है उन्होंने, है ना, जो बहुत डिस्ट्रीब्यूशन करता है बुक्स का उसको बड़ा कुछ गिफ्ट मिलता है पैक होकर। तो ऐसे सोचा क्या दूं इस जगत में, तो भगवान राम ने सारी चीजें ढूंढी उनको कुछ भी नहीं मिला देने लायक। उन्होंने सोचा इस जगत में इस हनुमान की सेवा के बदले मेरे पास देने योग्य कोई भी वस्तु नहीं है। तो भगवान राम रोने लगे। भगवान राम हनुमान के पास गए, हनुमान को कहा कि आपकी जो सेवा की भावना है ये अतुलनीय है, इसके बदले में मैं कुछ नहीं दे सकता, एक चीज मेरे पास है, वो क्या है? मेरा प्रेम भरा आलिंगन। क्या? बस हे हनुमान, इसके बदले में मैं केवल आपका आलिंगन कर सकता हूँ, इससे बढ़कर मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है। इस प्रकार से कृष्ण या भगवान अपने भक्तों के ऋणी हो जाते हैं, इतना अधिक भगवान उनसे प्रेम करते हैं। तो इससे हम समझ सकते हैं, सार यही है कि हमें अपने जीवन में चैतन्य महाप्रभु की जो दो महत्वपूर्ण गिफ्ट्स हैं उनके बारे में सोचना चाहिए। एक है हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 राम, और दूसरा है उनके प्रिय भक्त जिनके संगति में हम कृष्ण के नाम रूप गुण लीला धाम इन पांच चीजों के प्रति तीव्र अनुराग जागृत कर सकते हैं। और ये तभी संभव है जब हम इस प्रकार से भक्तों के संगति में आते हैं और संगति में आकर निरंतर कृष्ण कथा आदि का श्रवण करते हैं, तो सरलता से कृष्ण के प्रति आसक्त होते हैं। तो इसलिए हमने भगवान नाम की महिमा की चर्चा की। भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ने भी कहा दो चीजों का स्मरण करना चाहिए, हरि नाम और मृत्यु। और चैतन्य महाप्रभु ने भी विष्णु प्रिया को यही शिक्षा दी कि हमें दो चीजों का आश्रय ग्रहण करना चाहिए, भगवान के भक्त और हरि नाम। और हनुमान के जीवन से भी सीखा कि किस प्रकार से भगवान की सेवा अनन्य भावना से करनी चाहिए, जिसके रूप में कृष्ण सदैव ऐसे भक्त का स्मरण करते हैं। तो इस प्रकार से श्रील प्रभुपाद ने ये अमेजिंग वातावरण दिया है, भक्तों का संग दिया है, हाँ, तो इसका हम लाभ उठा सकते हैं। और अपने जो बचा हुआ जीवन है कि नहीं, सबके पास क्या है? लिमिटेड टाइम है, थोड़ा थोड़ा समय बचा हुआ है, किसी के पास 10 साल और बचे हैं, किसी के पास 20 साल, हम सोचते 70 साल तक जिएंगे तो, है ना, ऐसे झूल जैसा कोई शेर हमारे सामने आ जाए तो फिर हम कुछ नहीं कर सकते। हरे कृष्णा 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 हरे हरे,
हरे राम हरे राम 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 हरे हरे
हरे नाम संकीर्तन के हरे।